समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
कार्यक्रम परिक्रमा में अभिवादन स्वीकार कीजिए सरफिरोजी का। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सभी देशवासियों को अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं। ये दिन आज भारत की उस स्वर्णिम उपलब्धि की याद में मनाया जा रहा है जब बीते साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चांद की दक्षिणी सतह को छुआ था। कार्यक्रम में इस पर विस्तार से चर्चा होगी, साथ ही आपको देंगे देश दुनिया के समाचार। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन खास हस्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। परिक्रमा के इस अंक में मेरे साथ हैं शिफाली।
हेलो सर फिरोजी एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। आई होप यू आर एंजॉयिंग योर फ्राइडे आफ्टरनून। और जैसा कि सर फिरोजी ने कहा, आज नेशनल स्पेस डे है, तो उसी लिए हम सुनते हैं ये एक कोट बज़ ऑल्ड्रिन का। ही सेज, एक्सप्लोरेशन इज वायर्ड इनटू आवर ब्रेन्स। इफ वी कैन सी द होराइजन, वी वॉन्ट टू नो व्हाट्स बियॉन्ड। So welcome back to our program Parikrama on 100.1 FM, and for you we have a selection of news, our discussion segment Dateline India, reports, capsules, business tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi reaches Kyiv on day-long visit to Ukraine to hold one-on-one and delegation level talks with President Volodymyr Zelensky.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत और अमरीका स्वाभाविक सहयोगी हैं, दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी तय है।
इंडिया सेलिब्रेट्स फर्स्ट एवर नेशनल स्पेस डे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सेज, इसरो मेड इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस नॉट ओनली टू स्पेस सेक्टर बट ऑल्सो टू सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री।
सरकार ने स्वास्थ्य जोखिम को देखते हुए 156 निश्चित खुराक संयोजन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया।
And U.S. Vice President Kamala Harris accepts Democratic Party's presidential nomination against Republican rival Donald Trump. And now, dear listeners, it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today, jaisa ki humne bataya, we'll be talking about National Space Day 2024. Several years ago, the moon was an inspiration to poets and an opportunity for lovers. Few years from now, it may be just another airport. To all the dreamers and explorers, happy National Space Day. The universe is full of possibilities waiting to be discovered. The country is celebrating its first ever National Space Day today. On this day last year, Chandrayaan 3 mission accomplished safe and soft landing of the Vikram lander on the lunar surface.
हमने चांद पर भी जमाए कदम, हमने दरिया में भी घर है बनाया। 23 अगस्त वो तारीख है जब इसरो के स्पेस मिशन ने एक ऐसा पड़ाव पार किया जिसका सपना वैज्ञानिक कई साल से देख रहे थे। शाम 6:04 पर जब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह को छुआ था तो मानो देशवासियों की सांसें थम गई थीं। इसके साथ ही हम चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले और चांद को छूने वाले दुनिया के चौथे देश बन चुके थे। चंद्रयान 3 मिशन ने पिछले साल 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। 23 अगस्त को लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। 24 अगस्त को रोवर प्रज्ञान ने अपनी खोज शुरू की। चंद्रयान 3 की बदौलत ही भारत आज अपना पहला स्पेस डे यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। भारत के इस महत्वाकांक्षी मिशन को आज एक साल पूरा हो चुका है। भारत सरकार ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की मान्यता में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया, जो दिखाता है कि स्पेस रिसर्च में भारत की क्षमता किस हद तक पहुंच चुकी है और इससे पता चलता है कि हमारे देश के विकास में अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी का रोल कितना बड़ा है।
बिल्कुल। लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड August 23 as National Space Day to commemorate the mission's success, naming the landing site Shiva Shakti Point and renaming the Chandrayaan 2 landing site as Tiranga Point. With the achievement, India has joined the elite group of spacefaring nations, becoming only the fourth nation to land on the surface and the first nation to land near the South Pole of the Moon. The theme for this year's celebration is Touching Lives While Touching the Moon, India's Space Saga, which emphasizes the profound impact of space exploration on society and technology.
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। इस अवसर पर आज सुबह नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने न केवल अंतरिक्ष क्षेत्र में बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
इसरो भारत का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं गगनयान मिशन की भी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही हूँ, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष टीम को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इन सभी मिशन के फलस्वरूप ऐसे परिणाम सामने आएंगे जिनसे देश सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक रूप से लाभान्वित होंगे।
The president said, space exploration has increased the capabilities of human beings, transformed the imagination into reality, and revealed the secrets of the universe.
अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अतीत की बेड़ियों को तोड़ते हुए अंतरिक्ष क्षेत्र को और विस्तार दिया है।
हमारे वैज्ञानिकों के पास, हमारे विशेषज्ञों के पास प्रतिभा की कमी ना थी, योग्यता की कमी ना थी, मेहनत करने का मादा भी था, आंखों में अरमान भी थे। What was lacking was perhaps an enabling milieu which is expected from the policy planners, from the political leadership, and that was overcome when Prime Minister Modi came in.
ISRO Chairman S. Somnath said, "There's a lot of enthusiasm among people on National Space Day."
It was on 23rd August 2023, Chandrayaan-3 made the historic landing on the moon, creating a never-before event in the history of the space program of this nation. Honorable Prime Minister of India, he made the announcement of 23rd August to be the National Space Day. This year, the National Space Day is being celebrated all across the length and breadth of this country, and there is a lot of energy and enthusiasm that is visible.
On the occasion, President Murmu presented prizes to the winners of ISRO's Robotics Challenge and Bharatiya Antariksh Hackathon.
इस अवसर पर अपने संदेश में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, ये दिन आत्मनिर्भरता की भावना से प्रेरित है और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय यात्रा की याद दिलाता है। उपराष्ट्रपति ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त की कि उनके नवाचार और दृष्टिकोण भारत को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और मानवता को प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रवासी अंतरिक्ष के क्षेत्र में राष्ट्र की उपलब्धियों को गर्व के साथ याद करते हैं। उन्होंने कहा कि ये भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना करने का भी दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने इस क्षेत्र से संबंधित कई निर्णय लिए हैं और आने वाले समय में और भी अधिक निर्णय लिए जाएंगे।
The National Space Day was celebrated at Chennai with two cosmonauts gracing the occasion. Speaking on the occasion, Russian cosmonaut Sergei Korsakov congratulated India on the success of Chandrayaan-3 mission by landing on the moon. Sergei Korsakov has spent 194 days in space. Appreciating India's determination in space-related adventures, he said, "It is the hard work, innovation and persistence which paves the way for achievements."
India made history by a successful landing of Chandrayaan-3 lunar module on the moon. This amazing achievement wasn't just a big moment for India, it's also inspired people all around the world. I want to warmly congratulate the Indian Space Research Organization and everyone who helped make this amazing mission a reality.
Aidin Embatov, Kazakh cosmonaut who spent 10 days in space, said that he was happy and glad to be in India. But why are we interested in studying the moon? It is because the moon is the closest cosmic body at which space discovery can be attempted and documented. It is also a promising testbed to demonstrate technologies required for deep space missions. Also, the moon provides the best linkage to Earth's early history. It offers an undisturbed historical record of the inner solar system environment.
और शिफाली, हम सभी के मन में कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा होगा कि हमने विक्रम की लैंडिंग के लिए चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल को ही क्यों चुना।
बिल्कुल,
इसका भी जवाब हम अपने श्रोताओं को दे दें कि दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की कम रोशनी पहुंचती है जो इसे खासतौर से दिलचस्प बनाती है, और चंद्रमा पर काम करने वाले वैज्ञानिकों ने चांद के इस हिस्से में खास रुचि दिखाई है। धरती की तरह दक्षिणी ध्रुव पर भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और तापमान काफी कम होता है, तो वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि तापमान कम होने के कारण यहां पानी और दूसरे खनिज हो सकते हैं।
द ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ $350 billion and is projected to exceed $550 billion by 2025. New space startups can play a crucial role in India's space sector by exploring end-to-end services and data applications.
और शेफाली, अब जब हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक कीर्तिमान रचा है तो इसके बाद से स्पेस की फील्ड में संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। यहां तक कि भारत इस दशक के अंत तक यानी वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में अपने अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण पर विचार कर रहा है जहां अंतरिक्ष यात्री रह सकेंगे। अब इसरो सिर्फ एक अंतरिक्ष संस्थान नहीं है बल्कि ये अंतरिक्षीय प्रौद्योगिकियों में करियर बनाने के लिए बड़ी संख्या में छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया है।
जी, थैंक्स सर फिरोजी फॉर दैट यूजफुल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड वंस अगेन विशिंग एवरीवन अ स्टेलर नेशनल स्पेस डे।
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास हमारे लिए आज क्या खास जानकारी है।
सेलिब्रेशंस ऑफ द नेशनल स्पेस डे हैड बिगन अर्लियर दिस मंथ इन नागपुर। रिसेंटली विश्वेश्वराया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद इसरो, एक्सिस, टेक फेस्ट ऑफ VNIT एंड विज्ञान भारती सेलिब्रेटेड नेशनल स्पेस डे एट VNIT ऑडिटोरियम। अ रिपोर्ट फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
VNIT in collaboration with ISRO, VNIT's TechFest Axis and Vigyan Bharati celebrated National Space Day at VNIT Auditorium, Nagpur. The day-long event was aimed at school and college students and featured a series of insightful lectures and activities. The highlight of the event was Dr. P. Veeramuthu Vel, the project director of Chandrayaan 3, who was the special guest of honor. Dr. Teerth Pritham Das, director of Science Program Office, also attended as a guest of honor. Dr. Srinivasam, general manager of the Regional Remote Sensing Center, delivered the welcome address. In his opening remarks, Director Dr. Premlal Patel emphasized the significance of National Space Day. He highlighted ISRO's achievements with Chandrayaan 3, noting how the organization overcame the setbacks from Chandrayaan 2 through the rigorous root cause analysis, eventually achieving the historic feat of landing on Moon's South Pole. He underscored this as a lesson in resilience and problem solving for the students. Shri Naresh Tafikar from Vigyan Bharati discussed the role of Vigyan Bharati in promoting the science education, noting their outreach to 5 lakh students via the Space on Wheels bus. Dr. Veeramuthu Vel's lecture detailed the meticulous planning and execution behind the Chandrayaan 3's success. He explained the challenges of moon landing, including the critical 19-minute descent phase and the fail-safe measures implemented to ensure mission success. Dr. Veeramuthu Vel emphasized ISRO's learning curve from the past failures and the innovations incorporated in Chandrayaan 3. Even concluded with a prize distribution for 3 competitions, namely quiz competition, ideathon and Geospatial AI Challenge. This is Emangi Kulkarni with Dhananjay Vankhede for Parikrama from Akashwani Nagpur.
नागालैंड पहाड़ी इलाके वाला एक पहाड़ी राज्य है जो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। इस राज्य में पारंपरिक झूम या झूम खेती लोकप्रिय है। कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए दूसरा झूम मेला आज कोहिमा जिले के चिचामा गांव में आयोजित किया गया। कोहिमा से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
Buoyed by the success of the first Zoom Fair 2023, Chichamia Ferb Metzer Kroto organized the second Zoom Fair 2024 today at Chichama Village, 27 kilometers away from the state capital Kohima. Zoom Fair aims to celebrate and promote the agricultural products of Chichama and to support and uplift the local farmers by showcasing and selling organic products. The fair provides ample opportunity to the farmers to connect with the customers. Ms. Krengunyo Tionyo, member of publicity committee of the Zoom Fair, shares more insights.
My name is Krengunyo Tionyo. I'm a member of the publicity committee of the Zoom Fair that is being organized by the Chichamiepe Metro Kroto. The June fair has various stalls selling our organic products such as pumpkin, maize, cucumbers, tomatoes, etc. Besides that, we are also selling handmade baskets and other wooden products, agricultural tools and implements, traditional jewelry and many more. This program holds great significance as it provides a platform to the farmers, especially the women folk, to sell their products. It also helps the village economy and supports the farming community. This June fair will be an annual event and will be organized in the coming years too.
This June fair has been benefiting the farmers in many ways and helped boost the village economy. The first June fair has generated an income of over 1 crore rupees from the sales of organic vegetables and fruits. And this year too, it is anticipated to generate income up to 2 crore rupees. For Parikrama, Asunyo from Kohima.
And Sarfarozi, we all know the significance of a healthy environment, right? Mm-hmm. So carrying the message to protect the environment, a cyclist from Pune, Maharashtra, reached Manipur after covering 20,000 kilometers across the country. More from our correspondent.
Cyclist Jayan Mahajan, who is also an environmentalist from Pune of Maharashtra, pedaling for the planet and cycling expedition for climate actions, reached Imphal on Wednesday. He had started cycling expedition since January 2023, covering 20,000 kilometers across India to connect with people and raise awareness about protecting our forests, lands, air and water bodies. Talking to Akashvani News Parikrama, environmentalist Jayan said that his mission is to spread the message on climate change and to advocate for climate action and cultural preservation. His aim is to inspire tangible action against climate change, he said.
I started this journey for the cause of change before climate change from Kutch, Gujarat. From here, I intend to move towards Nagaland, Arunachal, and then exit from northeast into Bihar, and then further move to North India. I conclude my journey in Kutch, Gujarat.
Environmentalist Jayan Mahajan will continue his expedition for 9 months and plans to cover Leh, Kashmir, Punjab, Bihar, Rajasthan and culminate back to the place where he started the expedition. From there, he will also visit Lakshadweep and Andaman and Nicobar Islands, carrying the message on protection of the environment. The environmentalist is serving as an associate professor at Christ University of Pune in Maharashtra. Jaje Thokchom, Akashvani News, Parikrama, Imphal.
And now, dear listeners, it's time for us to take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
The day of 23rd August is important in the history of freedom movement because on this day in the year 1933, Mahatma Gandhi was released from Yerawada jail as his health deteriorated following a fast. In the beginning of August in 1933, Bapu declared his intention to offer individual satyagraha. The colonial government arrested Bapu in Ahmedabad and sent him to Sabarmati prison. Later, he was shifted to Yerawada jail, where he began a fast on August the 16th, because he was not allowed his work for Harijans from inside the jail. However, on August the 20th, he was admitted to a hospital, still a prisoner. By August the 23rd, his condition was serious and he was released unconditionally.
In today's episode, we also bring you the story of a great freedom fighter, Tanguturi Prakasham Panthulu, who is popularly called Andhra Kesari. It was today in 1872 that the famous freedom fighter was born in present-day Prakasham district in Andhra Pradesh. The district was named after him. He is known for his grit and valor against the British. In a famous incident, he stood before the police to shoot at him during the Simon Commission's visit to then Madras in 1928. His act of valor before the British police during the Simon Commission, Prakasham is also well known for his active participation in the non-cooperation movement in 1922. He organized a demonstration by 30,000 Congress volunteers in Guntur in 1942 when the call for Quit India was given by Mahatma Gandhi during the Bombay session of the Congress. Demanding an end to the British rule in India, Prakasham was one of the active participants. He was arrested and jailed for more than 3 years.
Prakasham also founded the Swarajya magazine and spread nationalistic sentiments across the country. Tanguturi Prakasham graduated from the Madras Law College. After practicing as a lawyer for 14 years, he went to England and completed the barrister's course to qualify as a lawyer in the Madras High Court. He met Gandhiji for the first time on a ship to London. He was fascinated by Gandhiji's idea for the freedom struggle. He served as State Congress President 4 times before the independence. He also served as the Chief Minister of the State of Madras and Andhra. His administrative abilities were reflected in his important decisions in manifold areas of statecraft. The Zamindari Abolition Report, prepared by him for Madras Province, became the precursor of the Government of India's efforts to abolish the system in the country. On May the 20th, 1957, the country lost one of its greatest sons and freedom fighters. India is forever indebted to the selfless service of these great men who fought for the independence of the country.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और लेते हैं वहां की जानकारी.
So, Saifirozi, India's ace tennis player Sumit Nagal is set to face Talon Griekspoor of the Netherlands in the first round of US Open on Monday. Sumit, who secured his spot in the US Open main draw in July, is ranked 72nd in the world and he's India's top-ranked men's singles tennis player.
और अब बात नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने स्विट्जरलैंड में लुसाने डायमंड लीग प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान लिया. नीरज ने अपने सीजन का सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर तक भाला फेंका. पीटर्स एंडरसन 90.61 मीटर के साथ पहले नंबर पर रहे. डायमंड लीग में नीरज पांचवीं बार भाग ले रहे हैं. जर्मनी के जूलियन वेबर 87.08 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे. दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी जैकब वार्डलेज सातवें स्थान पर रहे.
And in business news today, Indian benchmark indices ended flat in the volatile session. At the closing bell, the BSE Sensex closed 33 points or 0.04% higher at 81,086. The NSE Nifty up by 11 points or 0.05% to close at 24,823. In the global crude market, Brent crude is trading up at $77.92 per barrel and WTI crude is also trading up at $73.75 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, the 24-carat gold is trading up at 71,710 rupees for 10 grams and silver 999 fine is also trading up at 84,850 rupees per 1 kilogram when reports last came in.
और अब समय है उन खास हस्तियों को याद करने का जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या इस दुनिया से विदा हुए. श्रोताओं, आज सबसे पहले याद कर रहे हैं अभिनेत्री सायरा बानो को, जिनका आज जन्मदिन है. अपने समय की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक सायरा बानो को लोग उनकी मासूम अदाकारी के लिए पहचानते हैं. 1961 में सायरा बानो फिल्म जंगली में पहली बार पर्दे पर नजर आई. साल 1968 की फिल्म पड़ोसन ने उन्हें दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया. इसके बाद उन्होंने शागिर्द, दीवाना, चैताली जैसी फिल्मों में काम किया जिसमें उनके अभिनय को काफी सराहा गया. सुनते हैं उनकी फिल्म का ये डायलॉग.
तू अजीब तरह का आदमी है दीवानी, पर बुरा नहीं, अच्छा है, अच्छा आदमी है.
अजीब तो तुम भी हो राजकुमारी, पर अच्छी नहीं हो.
क्या?
अरे लड़की हो के घर से भागती, जो सुनेगा वही तुक्केगा.
भागती नहीं तो करती क्या? जिससे मेरी शादी हो रही थी वो लड़का मुझे प्यार नहीं करता. प्यार समझता है तू?
लो अजी, मेरा तो नाम ही प्यारे है.
लेकिन तूने कभी प्यार किया है किसी से?
बहुतों से करता हूँ.
बहुतों से?
जिसको देखता हूँ उसी से प्यार कर लेता हूँ. अब देखो ना, तुमको देख लिया, तुमसे प्यार कर लिया.
मैं वैसे प्यार की बात नहीं कर रही, मैं तो सच्चे प्यार की बात कर रही हूँ.
She also received 3 more Best Actress nominations for Shagird, Diwana and Sagina. Banu went on to be a part of many successful films including Bluff Master, Aai Milan Ki Bela, Jhuk Gaya Aasman, Padosan, Victoria No. 203, Hera Feri and Bairag. Her final film before retirement was Faisla. So let's listen to a song from her famous movie Padosan. Mechali, Mechali.
मैं चली, मैं चली, देखो प्यार की गली.
And dear listeners, today we observe the death anniversary of K. Ayyappa Panikkar, a Malayalam poet, literary critic, academic and a scholar in modern and postmodern literary theories, as well as ancient Indian aesthetics and literary traditions. He was one of the pioneers of modernism in Malayalam poetry and was a recipient of Kerala Sahitya Akademi Award, Padma Shri and Kendriya Sahitya Akademi Award for poetry. And today is also the death anniversary of David Daniel Rose, a British-born American songwriter, composer, arranger, pianist, and orchestra leader. He's best known for his compositions that were Holiday for Strings and Calypso Melody. So let's listen to Calypso Melody.
आज पुण्यतिथि है विनायक राव पटवर्धन की. ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक थे. सन 1932 में गंधर्व महाविद्यालय पूना की स्थापना करके इन्होंने पूरा जीवन संगीत की सेवा की. कई पाठ्य पुस्तकें भी इन्होंने लिखी जिनमें राग विज्ञान प्रमुख है. सन 1972 में विनायक राव पटवर्धन को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से नवाजा गया. आज ही जयंती है भारतीय प्रसिद्ध पार्श्व गायक केके की, जिनका पूरा नाम कृष्ण कुमार कुन्नत था. ये हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तमिल फिल्मों में प्रमुख गायक रहे. विख्यात फिल्म निर्देशक विशाल भारद्वाज ने केके को बॉलीवुड में गाने का पहला मौका दिया. इन्होंने बॉलीवुड में अपने संगीत के करियर की शुरुआत फिल्म माचिस के छोड़ आए हम वो गलियां से शुरू की.
तेरे पैरों के कवल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों में भंवर पड़ा करते थे.
Dear listeners, today is also the birth anniversary of Eugene Curran Kelly, or Gene Kelly, an American dancer, actor, singer, director and choreographer. He was known for his energetic and athletic dancing style and sought to create a new form of American dance accessible to the general public, which he called Dance for the Common Man. Kelly is best known for his performances in An American in Paris, in Singing in the Rain and in other films such as Cover Girl. So let's listen to the famous song Singing in the Rain by Gene Kelly.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love.
आज पुण्यतिथि है कुलदीप नैयर की. ये भारत के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार थे. भारत सरकार के प्रेस सूचना अधिकारी के पद पर कई सालों तक काम करने के बाद ये UNIPIB, द स्टेट्समैन, इंडियन एक्सप्रेस के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे. कुलदीप नैयर 25 सालों तक द टाइम्स लंदन के संवाददाता भी रहे. कुलदीप नैयर की आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स अंग्रेजी में छपी और इसके बाद हिन्दी में राजकमल प्रकाशन से इसका हिन्दी अनुवाद एक जिंदगी काफी नहीं आजादी से आज तक के भारत की अंदरूनी कहानी के नाम से प्रकाशित हुआ.
And dear listeners, today is also the birthday of Rita Faria Powell, an Indian physician, former model and the winner of Miss World 1966 pageant. She's the first Miss World winner to be qualified as a medical doctor. Also, dear listeners, today is the birthday of Pandit Tanmoy Bose, an Indian percussionist and tabla player, musical producer, film actor and composer. He has collaborated with Pandit Ravi Shankar, Anushka Shankar and Amjad Ali Khan and created the musical group The Tal Tantra Experience in 2002. His project, The Tal Tantra Experience, has performed in the Mideast, North America and the world over. So, let's listen to The Tal Tantra Experience.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का. इजाजत दीजिए सरफिरोजी और शेफाली को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की. नमस्कार.